नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में केजरीवाल स्पेशल। और हमारे साथ है आपके जाने पहचाने विजय सरदाना जी। विजय जी, आपका स्वागत है। आपके मित्र लंबे चले गए साहब।
संजय जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को प्रणाम। सर, देखिए, कानून के हाथ लंबे होते हैं तो हम बचपन से सुन रहे थे, अब देख भी लिए। तो अब सवाल ऐसा है सर कि लंबे जाएं या छोटे जाएं, ये तो जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा संविधान, हम तो ये कह सकते हैं।
ये मार्केट में नया है।
तो और संविधान कहता है सब बराबर है, तो अब वीआईपी ट्रीटमेंट जो कानून में किसी के लिए नहीं है, तो जो हो रहा है वो संविधान के हिसाब से हो रहा है सर।
लेकिन आज तो इकोसिस्टम वाले बहुत रो रहे थे कि देखिए साहब, ये जो है ये हर बार इसी बेंच को क्यों देते हैं सारे ईडी के केसेस। ये बेंच जो है ये किसी को रिलीफ नहीं देती। इसने हेमंत सोरेन को रिलीफ नहीं दिया, इसने के कविता को नहीं दिया, तो इसलिए जो है वो भाई लोगों ने उससे विड्रॉ कर लिया कि साहब जो है विड्रॉ कर लो तो बेटर है, चांस बना रहेगा, नहीं तो जाएंगे 6 महीने के लिए सीधे सीधे।
सर, इसमें तो फिर बहुत गंभीर आरोप है। इसका मतलब जुडिशरी पे ऑपोजिशन आरोप ये लगा रहा है कि हमें आप फोरम शॉपिंग करने दें और हमें इधर उधर भागने दें और देखें कि कंफर्टेबल कौन जजेज हैं जिनके आगे हमें रिलीफ मिलेगा। इसका मतलब लोग ये कहना चाह रहे हैं कि साहब, जजेज कुछ खास जजेज हैं जो कानून को वर्बेटिम फॉलो कर रहे हैं और कुछ जजेस हैं जो कानून को फॉलो नहीं कर रहे, वो मनमर्जी कर रहे हैं। क्या ये कहना चाह रहे हैं? अगर ये आरोप है
जी
जजेस पे तो जुडिशरी को
नहीं, देखिए
आप
तो वो तो ऐसा है साहब कि ऑड डे जुडिशरी इज ग्रेट और इट स्पीक्स ट्रूथ टू पावर, इवन डे जुडिशरी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ये ऑड डे इवन डे चलता रहता है इनका।
हाँ, तो ये तो सर मैं कह रहा हूँ ना कि ये बात तो अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि आप फिर जुडिशरी से पूछिए। सवाल अब जुडिशरी पे खड़ा हो रहा है, सवाल अब ईडी का नहीं है। अब तो सवाल जो अपोजिशन है और केजरीवाल की टीम है वो तो जुडिशरी पे खड़ा कर रही है कि साहब, जुडिशरी हमारे हिसाब से काम नहीं कर रही, इसलिए जुडिशरी बायस है, या फिर हमें ऐसे जजेस दीजिए जो हमारी सुने और हमारे हिसाब से फैसले करें, तब तो जुडिशरी ठीक है। अगर जुडिशरी कानून के हिसाब से चलती है तो जुडिशरी गलत है। क्या ये
आज
पोजीशन?
आज कपिल सिब्बल ने स्टेटमेंट दिया था एक कविता वाले मामले में, ने उन्होंने बेंच को कहा, कपिल सिब्बल का स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। माय लॉर्ड्स, व्हेन द हिस्ट्री ऑफ दिस कोर्ट विल बी रिटन, दिस विल नॉट बी इन गोल्ड। जस्टिस खन्ना ने जवाब क्या दिया, इट्स ओके, वी विल सी, वी कांट बाईपास स्टैचुटरी रेमेडीज मियरली बिकॉज पॉलिटिशियन इज इन्वॉल्व। अब इसमें क्या गलत है क्या सही है, या आप विवेचना करें।
देखिए, जहां तक बात है, अब क्या हो रहा है ना सर कि बड़े वकील क्यों हायर किए जाते थे, आपको भी पता है कि बड़े वकील और खास वकील इसलिए हायर किए जाते थे कि इनकी पहुंच है, जजेस इनको देख के शायद कुछ घबरा जाएंगे, इनके कहे अनुसार चलेंगे, इसीलिए इनका भाव चलता था।
घबराने की
अब
बात कम
जुडिशरी
है
के
साहब, सही बात तो यह है, आप तो वहीं बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते रहते हैं, आपको भी पता है कि फिक्सिंग होती है और किस तरह से इन लोगों को ओबलाइज किया जाता है, कॉन्फ्रेंसेस इत्यादि में बुला के, विदेशी कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करा के और सब करके, इनके जो वार्ड्स होते हैं उनको बड़े चेंबर में एम्प्लॉय करके, ये सारे कार्य होते हैं साहब, आप तो जानते हैं अच्छी तरह से। ये होता है,
नहीं, मैं वही
इसलिए
कह रहा
बड़े
हूं।
वकीलों के चंगुल में रहते हैं ये लोग। इसीलिए जिनके लोग, जिनके बच्चे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बल्कि ये तो बाहर होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के वकील का कोई भी बच्चा जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करेगा,
जजेस का, पर वो तो ऑलरेडी
जजेस
है
का।
सर। हाँ, वो तो है, वो तो कोड ऑफ कंडक्ट में है,
अरे सर, वो
उसमें तो
सबरवाल के लड़के क्या करते थे, भूल गए आप।
नहीं, उसके बाद तो हुआ ना सर। अभी भी अभी एक नए सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, उनके बच्चे अब सुप्रीम कोर्ट में अपीयर नहीं होते हैं। क्योंकि कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर कि देखिए, ये बात तो सही है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होना चाहिए। अभी तो इसमें अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने जजेस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट अभी जारी किया है करीब 2 साल पहले, उससे पहले एक बैंगलोर डिक्लेरेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट ऑन जजेस है, वो भारत में यूएन के तहत उस पर पूरी चर्चा हुई, इसका नाम ही बैंगलोर डिक्लेरेशन, लेकिन दुनिया
1998 में जारी हुआ था
और 54 कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है, भारत ने नहीं किया। भारत की जुडिशरी कोड ऑफ कंडक्ट में विश्वास नहीं करती है क्या? अब सवाल ये है। फिर इन्होंने कहा कि साहब कोड ऑफ कंडक्ट हमारा अपना है। अरे भाई, जब आपके पास एक इंटरनेशनल नॉर्म है, आप दुनिया में ट्रांसपेरेंट, जैसे ईडी है या पीएमएल है, पीएमएलए से लोग क्यों परेशान है? क्योंकि पीएमएलए अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसको काम करना जरूरी है, नहीं तो भारत को एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में कर देंगे।
करेक्ट।
अब अगर आप इंटरनेशनल गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो कोई नहीं देखेगा कि आप केजरीवाल हैं या आप राहुल गांधी हैं या आप सिब्बल साहब हैं या आपके वकील कौन है, वहां तो चलेगा नहीं, वहां तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है, इसीलिए ये परेशान है। तो अगर आज इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है जजेस के लिए, हम अडॉप्ट कर लेना, सारी कॉन्ट्रोवर्सीज खत्म हो जाएंगी। इसीलिए इसी तरह से ओईसीडी का एक कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे एक बहुत अच्छी गाइडलाइन है, आप पूरे हिंदुस्तान में उसको अडॉप्ट कर लीजिए, आपकी सारी पॉलिसी मेकिंग और जो बार बार आरोप लगता है कंफ्लिक्ट बिटवीन यू नो पॉलिसी मेकर्स और कनाइवेंस बिटवीन पॉलिसी मेकर्स ओब्लिक जुडिशरी ओब्लिक इंडस्ट्री ओब्लिक पॉलिटिशियंस व्हाटएवर, तो ये भी अपने आप एड्रेस हो जाएगा क्योंकि उसमें बहुत क्लियर गाइडलाइंस है। तो सारे टूल्स एंड ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर हम अपने सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सुधारना चाहते हैं। अब सवाल बहुत सिंपल आ रहा है सर, जो सामने बार बार आ रहा है कि साहब सिटिंग चीफ मिनिस्टर को पहली बार अरेस्ट किया गया है, तो भाई आज से पहले भी जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे अगर वो करप्शन करते थे और आप उन पर कार्रवाई नहीं करते थे तो क्या वो अच्छा ट्रेंड था या अब अच्छा ट्रेंड?
मैं इसको थोड़ा सा सुधारूंगा, ये जो बात जो कही जा रही है ना, ये इसमें बहुत भारी हिपोक्रेसी है। पहले जब सिटिंग चीफ मिनिस्टर की अरेस्ट की बात आती थी तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर दिया करते थे, जैसे जयललिता को जब अरेस्ट किया था तो जयललिता ने अरेस्ट से पहले रिजाइन कर दिया था, या हेमंत सोरेन को भी जब अरेस्ट किया था तो हेमंत सोरेन ने कहा था कि भाई मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मुझको ले चलो, मैं आपके साथ चलता हूँ, मुझको आप ले चलें गवर्नर के पास, मैं अपना रेजिग्नेशन वहाँ दे दूंगा, उसके बाद आप मुझे अरेस्ट कर लेना। इसलिए कहते हैं कि पहला सिटिंग चीफ मिनिस्टर है। अब भाई जो है हमारा भाई केजरीवाल भाई, तो केजरीवाल भाई को अब 6 दिन का रिमांड दे दिया गया, 28 तारीख तक का रिमांड दे दिया गया उनको, और जेल मैनुअल के हिसाब से चलेगा ये भी स्पष्ट कर दिया दिल्ली सरकार की ओर से, जो भी सक्षम पदाधिकारी हैं। तो अब आप तो मुझे ये बताइए कि केजरीवाल जी की सरकार जो है वो एक केजरीवाल जी ही चलाएंगे या कोई और चलाएगा?
देखिए, मुझे तो ये लगता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है कोर्ट्स के सामने भी और राष्ट्रपति महोदय के साथ भी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, केजरीवाल इज नॉट इंपॉर्टेंट, कोई और व्यक्ति भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस देश का कानून चलेगा संविधान के हिसाब से, और संविधान के रक्षा की दायित्व है 2 लोगों के पास, एक तो है राष्ट्रपति और दूसरे है सुप्रीम कोर्ट। अगर राष्ट्रपति महोदय को ये लगता है कि दिल्ली में सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही, आपने एक अपराधी को जो जेल में है उसको मुख्यमंत्री बना के कह दिया अब आप जेल में बैठ के फाइलें साइन करेंगे और सारे कॉन्फिडेंशियल पेपर्स आपके पास जाएंगे और आप वहां से साइन करके जेल में से भेजेंगे, तो इसका क्या औचित्य है? कौन फिर तो ऐसा है सर, फिर आप केजरीवाल को क्यों, जितने आपने कंपनी के एमडी सीईओ बैठे हैं सबको वहां ऑफिस खोलने दो, जिन जिन को आपने अरेस्ट किया वो घर अपने कंपनी में वहां जेलों में बैठ के कंपनियां चला लेंगे, दिक्कत क्या है? जब एक सीएम स्टेट चला सकता है तो बाकी लोगों ने क्या गुनाह किया? फिर तो डॉक्टर भी वहां बैठ के इलाज कर लेगा, फिर तो जेल का कोई लॉजिक नहीं रहा ना, फिर आपका पनिशमेंट क्या है अगर आप बैठ के वहां सारे पर्क्स और लग्जरी एंजॉय कर रहे हैं? तो सवाल इस बात का है कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज को एड्रेस करने के लिए राष्ट्रपति महोदय और सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन बनानी पड़ेगी कि भाई इफ एनीबॉडी इज कन्विक्टेड बिफोर गोइंग टू जेल विल बी डीम्ड एज रिजाइंड और शुड बी टर्मिनेटेड, आइदर वे लिटरली कर लो, नहीं तो इट बी डीम्ड एज टर्मिनेटेड, एलजी हैज टू इशू द नोटिस। और अगर ये वॉलेंटरीली नहीं करते हैं तो मुझे लगता है एलजी साहब को प्रेसिडेंट को एक चिट्ठी भेज देनी चाहिए कि दिल्ली के अंदर कोई सीएम नहीं है, जो सीएम था उसने रिजाइन नहीं किया, वो जेल में है, दिल्ली की व्यवस्था कैसे चलेगी हमें नहीं पता, और दिल्ली की आम आदमी पार्टी अपना कोई नया नेता चुनने में असमर्थ है। जब तक वो अपना नया नेता नहीं चुनते हैं तब तक दिल्ली की असेंबली को सस्पेंड कर दिया जाए। तो जब आप दिल्ली की असेंबली को सस्पेंड कर देंगे तब तक एलजी के कंट्रोल में रहे, और जब तक ये लोग नया सीएम नहीं बनाते तब तक सस्पेंशन में रहे, तो इन पे दबाव होगा कि जल्दी से नया सीएम बनाओ, नहीं तो ये जो मजे कर रहे हो बैठ के अभी टैक्स पेयर के पैसे, ये भी आसे चला जाएगा। तो कुल मिला के रास्ते हैं, अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, उपराज्यपाल और राष्ट्रपति भवन इस पूरे घटनाक्रम को कैसे लेते।
जी 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 बिल्कुल, देखिए आतिशी जी क्या कह रही हैं। आतिशी जी कह रही हैं, बीजेपी वालों तुम लोग केजरीवाल जी को तो बंद कर सकते हो, लेकिन उनकी शौच को कैसे बंद करोगे।
हाँ, तो बिन लादेन भी तो यही कहता था ना सर, आईएसआई
शौच को, सोच को नहीं।
हाँ वो मैं समझ गया सर, वो तो सोच सर, उसी क्वालिटी का स्टेटमेंट आता है ना वो जो स्टेटमेंट आते हैं उनके, उसी क्वालिटी
का। तो ये कहना है कि शौच तो अपने आप बंद हो जाएगी, जब बंद हो जाएंगे तो
नहीं सर, कभी कभी वो
कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा
हाँ, लेकिन थोड़े दिन तक तो दिक्कत करेगा ना सर, डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मेरा ये कहना है सर इस पूरे प्रोसेस में कि यही बात तो सर अलकायदा का था, अलकायदा में कौन सा लीडर था, आपने बिन लादेन को मार दिया, अलकायदा की फिलोसफी थोड़ी रुक गई, तो आतंकवादी घटाया तो आतंकवादी संगठन तो इसी काम करते हैं, वो कौन सा हेड ऑफिस लेके बैठते हैं, वो कौन सा अपना पोस्टल एड्रेस और पिन एड्रेस और ईमेल कॉन्टेक्ट नंबर देते हैं किसी को। जितनी आतंकवादी संगठन हैं वो तो आइडियोलॉजीज पे ही चलते हैं ना, जितने भी संगठन अराजकता फैलाते हैं वो आइडियोलॉजी पे चलते हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि हमारी आम आदमी पार्टी के नेता को आप अगर हटा भी देंगे हमारी आइडियोलॉजी बरकरार रहेगी अराजकता फैलाने वाली, तो बहुत अच्छी बात है, यू आर इन द सेम कैटेगरी। वो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी फिर देखेगी कैसे करना है ऐसे लोगों को।
ये बताएं कि आप जिस आम आदमी पार्टी का भविष्य आप क्या देखते हैं।
सर आम आदमी पार्टी का भविष्य मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि ये जो नेशनल पार्टी तो अब नहीं रहेगी। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा ये असेसमेंट है कि आम आदमी पार्टी को पंजाब ग्रुप को अलग कर देना चाहिए, अपना ईमानदारी से वहां बैठ के राज्य चलाएं, जनता की सेवा करें, आलतू फालतू के एनर्जी और टाइम वेस्ट ना करें बेकार की नेतागिरी में, क्योंकि इनके नेता करप्शन के चार्ज में बंद हुए हैं और कोई महान काम इन्होंने नहीं किया है। और अन्ना हजारे ने तो बोल ही दिया ना आज कि जब हमने अनशन किया था तो ये शराब के खिलाफ बोलता था, जब ये कुर्सी पे बैठा है तो शराब की कानून बना रहा है, उसकी वजह रिश्वत खा रहा है, तो कर्म तो ऐसे ही किए हैं। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को पंजाब को गुजरात को अपने आप को एज ए आम आदमी पार्टी गुजरात, आम आदमी पार्टी पंजाब के नाम से रजिस्टर करवा लेना चाहिए, अपना बेस वहां पड़ा। दिल्ली की तरफ देखेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, आपको दिल्ली के कुकर्मों को जस्टिफाई करने के लिए अपने लोगों के बीच में बाधित होना पड़ेगा। तो कम से कम इस अपमानजनक स्थिति से तो बदले, और फिर अगर आपने अच्छा काम किया है लोग आपको पसंद करते हैं तो आप जैसे बाकी नए गुट बहुत खड़े होते हैं, आप भी एक अपनी ईमानदारी से छवि बनाइए और जनता आपका साथ देगी। दिल्ली में तो जनता ने इसलिए साथ दिया था कि आप लोग ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन ईमानदारी के नाम पे जो दिल्ली की जनता और देश की जनता के साथ जो छलावा हुआ है और जिसके एविडेंस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सबके सामने आ गए हैं, तो वहां तो कोई औचित्य बनता नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो रीजनल ग्रुप्स हैं या आम आदमी पार्टी माइनस दिल्ली, या दिल्ली के अंदर बाकी जो राज्यों के नेता हैं, चाहे वो भगवंत मान है, इसी तरह गुजरात है, गोवा है, जहां भी इनके बेस है और जो इनके राज्यसभा मेंबर्स हैं, मुझे लगता है उनके नेताओं राज्यसभा और लोकसभा के जो भी मेंबर हैं उनको एक साथ बैठ के ये रणनीति बनानी चाहिए कि हु इज द अल्टरनेटिव केजरीवाल। क्योंकि देखिए अब अगर ये प्रूफ आ गया, अब कविता ने बोल दिया कि ये सब घपले हुए हैं, डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, तो ये अगले 10 साल चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि कम से कम सजा 3 साल की करप्शन के केस में, ईडी के मुद्दों पे लेके, मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दों पे लेके 3-4 साल तो इनके जेल में निकलेंगे। जब भी ये बाहर निकलेंगे,
मनी लॉन्ड्रिंग में तो 7 साल की सजा है मिनिमम।
मैं वही कह रहा हूँ ना सर कि कम से कम तो आपको करप्शन में 3 साल, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के केस आप जोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए किसी भी रूप में अगर इनको 3 साल की सजा हो जाती है, मैं मिनिमम साइड लेके चल रहा हूं, जेल से निकलने के बाद 6 साल आप चुनाव नहीं लड़ सकते, तो मतलब 9 साल। 9 साल का मतलब ये हो गया कि 2 चुनाव, चाहे विधानसभा हो या पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, आप 2 चुनावों से सक्सेसिवली बाहर रहेंगे। सर हिंदुस्तान की राजनीति में लोग 6 महीने बाद किसी को नहीं पूछते, तो 10 साल की बात कर रहे। तो ये मुझे लगता है कि इनका पॉलिटिकल कैरियर अब खत्म है। ये बाहर बैठ के एक काम कर सकते हैं, आम आदमी पार्टी वाले एक मार्गदर्शक मंडल बनाएं और जो जो इनके नेता जेल जाते हैं उन सबको उसमें ट्रांसफर करते जाएं, तो मार्गदर्शक मंडल बन जाएगा, बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो अपनी सरकार चलाएं, सत्ता चलाएं, तब तो इस पार्टी का भविष्य कुछ दिखता है। अगर ये जेल गए हुए नेताओं के आगे पीछे घूमते रहेंगे, समाज में इनकी इतनी दुर्गति होगी, ये जब भी समाज में जाएंगे इनके नेता, इनके कार्यकर्ता, इनके फील्ड वर्कर्स, इनको जवाब देना मुश्किल होगा, तो दैट विल बी एम्बैरेसिंग, तो पार्टी खत्म हो जाएगी, तो इनको सीरियसली सोचना पड़ेगा।
हाँ आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, बल्कि इसमें ये भी हो सकता है कि भाई आम आदमी पार्टी, लेकिन वो आम आदमी पार्टी को इतना बौना कर दिया गया है, कोई भी जो थोड़ा सा भी जिसके किसी के प्रकार का हैसियत थी, ऐसे तो हर व्यक्ति को बाहर कर दिया गया है, तो इस समय पार्टी में कोई कॉल लेने वाला है नहीं। भगवंत मान कॉल ले सकता है ये कि हाँ ठीक है केजरीवाल को पार्टी से सस्पेंड किया जाता है, पार्टी से सस्पेंड कर दो, पार्टी चलाओ।
नहीं वही भाई सीधी सी बात है कि जब तक केजरीवाल साहब कानूनी रूप से बरी नहीं हो जाते तब तक वो पार्टी के कार्यकाल में हस्तक्षेप ना करें, बस इतना करना है। चाहे सस्पेंड करें या ना करें, एक मैसेज तो चला गया कि आप उछल कूद ना करें, आराम से बैठे सरकारी मेहमान बनके और कुछ किताब विताब पढ़े, गीता विता पढ़े, क्योंकि मनीष सिसोदिया भी किताब लेके गए थे अपने साथ जेल में, अब वो पढ़ी या नहीं पढ़ी वो बाद की बात है, कम से कम अंदर बैठ के लूडो चेस तो खेल ही सकते हैं ना, तो इतना काम तो हो ही सकता है।
देखिए बड़े बड़े लोग अप्रूवर बन गए, हो सकता है मनीष सिसोदिया भी अप्रूवर बन जाए, बचने के लिए क्या है दिक्कत?
सर वो बनेंगे नहीं, कारण मैंने शुरू से मैं कह रहा हूँ, अगर आपने मेरे स्टेटमेंट्स और वीडियोस को फॉलो किया और दर्शक करते हैं, मैंने एक बात बहुत क्लियर कही थी, दिल्ली का गुट नहीं टूटेगा। उसका कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि सब एक दूसरे के जो दुखती रगे ना और सबके राज एक दूसरे लोग जानते हैं, और मैं फिर कह रहा हूं उसका कारण ये है कि जितना पैसा इकट्ठा हुआ है आम आदमी पार्टी में, चंदे के नाम पे, करप्शन के नाम पे, जिस भी नाम से आप कहें, सारा पार्टी में नहीं गया है, सबने उस पैसे की बंदर बांट भी करी है और सबको पता है किसने क्या किया है। तो अगर मनीष सिसोदिया टूटेगा तो केजरीवाल कहेगा भैया तू कौन सा दूध का धुला है, तो ये क्रैप गेम शुरू हो जाएगा, ये कलेक्टिवली एक दूसरे को लेके डूबेंगे। तो इन्होंने एक पैक्ट कर रखा है कि हम एक दूसरे पे लांछन नहीं लगाएंगे, इसीलिए आप देखेंगे संजय सिंह ने कभी मनीष सिसोदिया का नाम ले लिया, कभी मनोज सिसोदिया ने कभी संजय सिंह और केजरीवाल का नाम नहीं लिया, कभी विजय नायर ने इनमें से किसी का नाम नहीं लिया, बाहर बैठ के अंदर बैठ के एक दूसरे की तारीफ करते रहे, क्योंकि इनको पता है कि अगर इनमें से एक भी टूटा ये सब डूब जाएंगे। तो ये गुट था, मैं इसी बात को कह रहा था कि ये तो आपस में दिल्ली में बैठ के क्लोज क्वार्टर बन गई, लेकिन जो साउथ गुट है उनका इनसे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, वो प्योर व्यापारी लोग हैं। और जैसे ही कविता की अरेस्ट हुई, उसी दिन अगर आप मेरा वीडियो देखें, मैंने लिखा था कि सिसोदिया और केजरीवाल की गर्दन अब अपना कविता के हाथ में, क्योंकि कविता को इससे कोई लेना देना नहीं है, कविता अपने जिंदगी अपने परिवार को केजरीवाल के लिए क्यों बर्बाद करेगी सर, बताइए मुझे। तो वो तो कह देंगे ठीक है सर ये घपला हुआ था मुझे पता है और मैं विटनेस बनती हूं, मैं ये सारे इसको यहां ऐसे इस आदमी ने इतने इतने पैसे यहां दिए थे, छुट्टी करो मेरी। अब उसने 7 दिन के अंदर सारी चिट्ठियां खोल के रख देनी है, उसके बाद कोर्ट में जाएंगे, वो कहेंगे साहब कविता हैज हेल्प्ड अस इन इन्वेस्टिगेशन, मनी ट्रेल एस्टेब्लिश हो गई है और कविता को हम चाहते हैं कि अब जो भी मिनिमम सजा हो आप दे दें, क्योंकि अब कविता क्या डैमेज कर लेगी सर, कविता के फादर अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाएंगे, ये वहां चली जाएंगी वापस अपने परिवार में, 6-7 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा, शी विल बी बैक इन एक्शन। तो कविता की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, इसीलिए अगर कविता रेजिस्ट करती है सच बोलने में और केजरीवाल को छुपाने का प्रयास करेगी या आम आदमी ने जो घपले किए हैं उनके ऊपर पर्दा डालने का प्रयास करेंगी तो जो कविता है वो अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रही, क्योंकि उनका मुद्दा उतना लंबा होगा, उतने एलिगेशंस बढ़ेंगे, उतने इनके ऊपर खिलाफ जाएगा कि शी इज ट्राइंग टू डिस्टर्ब द प्रोसेस, शी इज नॉट कोऑपरेटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो कविता के लिए नुकसानदायक है। पैसे का ट्रांजेक्शन हो गया, घपला हो गया, सबको सब पता है। अब जबरदस्ती उसको डिनाई करने का कोई औचित्य नहीं है। अब तो बेहतर है एक्सेप्ट बनो, कंसेंट में जो भी आपको 164 के तहत आपको जो भी बयान देने मजिस्ट्रेट के सामने जमा करवाइए, जो आपके पास एविडेंस है दीजिए, कोर्ट में अपील करिए, साहब जो मेरे पास था मैंने सब दे दिया, अब मुझे बेल पे घर जाने दो, मैं ना एविडेंस डिस्ट्रॉय कर पाऊंगी, मैं रहती हूँ हैदराबाद, सारे एविडेंस है दिल्ली, मैं वहां से दिल्ली नहीं आऊंगी, ये मैं अंडरटेकिंग आपको दे देती हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप ट्रायल करिए, अगर मैं एक्यूज पाई गई बाद में तो जो मेरे को आप सजा देंगे मंजूर है। और हो सकता है कि अगले 6 महीने 7 महीने में जब तक ये केस खत्म हो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बदलेगा, और हो सकता है कि सरकार और ईडी भी कोर्ट में कह दे कि कविता की हमें जरूरत नहीं है और कविता इज गुड बिहेवियर के हिसाब से जो मिनिमम सजा आपको देनी आप दीजिए, फिर कोर्ट के ऊपर है। तो मुझे लगता है कविता के लिए और साउथ ग्रुप के लिए रास्ता आसान है इस पूरे झंझट से निकलना। फंसेंगे ये 4 लोग क्योंकि ये एक दूसरे के कई रहस्य जानते हैं और ये मुंह नहीं खोलेंगे, क्योंकि अगर एक ने खोला तो फिर कई परतें और खुल जाएंगी। ये बात हमें समझनी।
एक बात और है, क्या आप मानते हैं कि ये जो पूरा हमारा लिबरल इकोसिस्टम है इसको एक ऐसा धक्का लगा है जिससे ये आसानी से उभर नहीं पाएगी, क्योंकि इसने अपना बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया था केजरीवाल में और केजरीवाल ने इनको बहुत पनपाया था, मीडिया को जितनी ब्राइब जिसको हम कह सकते हैं, जितनी ब्राइब केजरीवाल ने दी उतनी किसी और ने नहीं दी, यहाँ तक कि बड़े बड़े तथा कथित राइट विंग बीजेपी सपोर्टर चैनल भी सब कुछ करते थे, केजरीवाल के खिलाफ मुंह नहीं खोलते थे, उसने इनका मुंह पैसों से भर रखा था। अब ये पूरा इकोसिस्टम क्या आपको लगता है कि ये ब्रेक होगा?
सर देखिए, ये दोस्ती पैसे की है, यह कोई आइडियोलॉजिकल कनेक्ट नहीं है। ऐसे से भी न्यूज चैनल होंगे जिन्होंने 5-10 लोग सिर्फ केजरीवाल की सर्विस में लगा दिए होंगे कि भाई आप जाइए वहां से वाइट लाइए, एडिट करिए, टेलीकास्ट करिए और उसी को रोटेट करते रहिए जब तक अगली वाइट नहीं आ जाती, और अगर बन जाती है तो आप सीक्वेंस बनाते रहिए, पिछली 10 वाइट चलाते रहिए, रोज 2-4 नई जोड़ते रहिए और वो कैसेट घुमाते रहिए और डिस्कशन के नाम पर डिस्कशन करते रहिए कितनी अच्छी आम आदमी कॉलोनियां बननी और कितने अच्छे इन्होंने बाकी काम किया और कितनी जल्दी जमुना साफ हुई, सब आप चर्चा करते रहिए, तो ये सब होता रहेगा। वो बिजनेसमैन लोग हैं सर, उनके पास पैसा नहीं आएगा, वो स्टाफ को शिफ्ट कर देंगे दाएं बाएं किसी और डिवीजन में और मान लेंगे कि चल यार ये एक रेवेन्यू फ्लो नहीं आ रहा, ये कस्टमर चला गया, बस। उनका कोई केजरीवाल से इमोशनल या आइडियोलॉजिकल अटैचमेंट नहीं है सर, ये व्यापारी लोग हैं, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो कोई और हो, तो दुकानदार है सर, उसको क्या लॉयल्टी देनी है किसी से। इसलिए मैं कह रहा हूं कविता को भी कोई इसलिए ज्यादा अटैचमेंट इसलिए नहीं होगा, भाई उनको शराब बेचनी थी, आपने नहीं बेचने दी मत बेचो, हमें कमीशन नहीं मिला हम आपको नहीं देंगे, आपने कहा था कि आप हमें एडवांस में कमीशन दे दो, फर्स्ट टाइम हुआ सर ये भी, ये तो कहते ना हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं हुआ कि कोई सिटिंग सीएम, तो भैया आज से पहले एडवांस ब्राइब लेके पॉलिसी किसने बदली है सर, ये भी तो हिंदुस्तान में पहली बार हुआ। आप देखिए एक नया बिजनेस मॉडल क्रिएट किया केजरीवाल ने कि जिसको पॉलिसी बदलवानी अपनी बुकिंग करा लो हम बदल देंगे और ड्राफ्ट आप दे दो हम साइन कर देंगे, यही तो गेम किया इन्होंने, तो ये भी तो हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। तो कहने का मतलब यही है सर कि बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, प्रॉब्लम दिल्ली ग्रुप की है, साउथ ग्रुप को मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम है, सारे के सारे विटनेस और अप्रूवर बन जाएंगे, वो सारे कागज ला के इनके सामने रख देंगे, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इनको बचाने में, लेकिन इन चारों का इंटरेस्ट है।
आपको एक लिबरल का एक ट्वीट पढ़ता हूं, बड़ी लिबरल है मतलब लिबरल सर्कल में बड़ी पहचान है, अनारकली ऑफ आरा इनका हैंडल है, पूरी दिल्ली में एकदम सन्नाटा है, मेरी बात बिल्कुल सटीक साबित हुई, इतना भी बड़का आईटी सेल बना लो, राजनीति जमीन से ही होती है। आम आदमी पार्टी अपना सारा जन समर्थन खो चुकी है, 60 से अधिक विधायक हैं। अगर एक एक विधायक भी अब तक 5-5 हजार लोग भी ले आते तो अब तक 3 लाख लोग पीएमओ घेर लिए होते। फिर कौन मोदी कौन ईडी में कुछ भी करने का दम था क्या? फिर ये एग्जाम्पल देते हैं कि साहब की किस तरह से बिहार में जनता जो है वो तेजस्वी यादव के समर्थक पूरी रात सड़क पर आ गए थे। हालांकि वो सरकार चली गई, वो बात अलग है, लेकिन पूरा प्रतिरोध किया। यहाँ तो कहीं प्रतिरोध भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये सारा का सारा रेत का महल था।
हाँ सर, ये खुद का बनाया हुआ है ना। खुद ही आपने अपने आप को महात्मा गांधी बता दिया, खुद ही आपने अपने आप को भगत सिंह बता दिया, खुद ही आपने अब कह दिया मैं दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी हूँ, खुद ही बोल दिया कि मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है, खुद ही बोल दिया कि ईडी के समन सारे गैर कानूनी है, खुद ही बता दिया ईडी की जरूरत नहीं है इस देश में, खुद ही बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पता ही नहीं काम कैसे करना है। तो ये तो सर सर्व ज्ञाता लोग हैं, इनको अपने अलावा सब खराब दिखता है। और जहां तक बात है सर इनके एमएलए एमपी की, मैंने यही तो बोला ना सर कि आज मैं भी दिल्ली में ही हूं ना सर, मैंने तो किसी एमएलए को नहीं देखा। मैं इनके बहुत सारे लोगों को जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि यार ये गलत हो रहा है। एक बात और बताइए ना सर, इनके पास 7-8 समय राज्यसभा में एमपी है, किसी का स्टेटमेंट सुना आपने? इनके एमपी सिटिंग एमपी किसी का स्टेटमेंट सुना आपने? क्योंकि वो सब बिजनेसमैन है, वो टिकटें बेची खरीदी गई हैं, उनका आइडियोलॉजी से कोई अटैचमेंट नहीं है। उनको कौन जानता आम आदमी पार्टी में नॉमिनेशन से एक दिन पहले था? कोई नहीं। नॉमिनेशन के बाद आज भी मुझे नहीं पता आम आदमी पार्टी के लोग जानते होंगे कि इनके राज्यसभा एमपी कौन है, मुझे नहीं पता। आप वोटिंग करा लीजिए, 95% 99% लोग फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो आम आदमी पार्टी है ये सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशन में विश्वास करती है कि देखिए हमें चाहिए कुर्सी, हमें चाहिए जनता का टैक्स पेयर के पैसे पे कब्जा, ताकि हम अपनी जिंदगी शीश महल में मजे से निकाल लें। बाकी हमें क्या लेना देना है जनता से? जनता को चाहिए लॉलीपॉप, वो हम दे देंगे टैक्स पेयर के पैसे से, बिजली फ्री, पानी फ्री। एक गुट ऐसा है जो मोदी को कभी जिंदगी में वोट नहीं करेगा, मुस्लिम गुट, तो वो तो पास आने ही आना है क्योंकि कांग्रेस का तो धरातल ही खत्म हो गया है, तो वो बाय डिफॉल्ट उनकी मजबूरी है मुझे वोट देना। केजरीवाल जानता है इस बात, वो मोदी और बीजेपी को किसी हालत में वोट नहीं देंगे, चाहे वो कितने परेशान, उनकी मजबूरी है केजरीवाल को वोट देना। और बाद में फिर फ्री बिजली, फ्री पानी, झुग्गी झोपड़ी, रोहिंग्या, ये जो बसाए हुए लोग हैं इनको क्या दिए? उनको चाहिए कि भाई एक आदमी ऐसा हो जो गारंटी देता रहे कि सब कुछ फ्री मिलता रहेगा, और ये उस चीज की गारंटी केजरीवाल दे ही रहा है। तो वो वोट इनको मिल गए, तो 30-40% ये वोट मिल गए। और हिंदुस्तान की राजनीति में जो बाकी सोते रहते हैं लोग 60-70%, जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करते, वो सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के रोते रहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, तो उनको कोई पूछता नहीं, इसलिए केजरीवाल की दुकान चलती रहती। सिंपल इक्वेशन है दिल्ली का, दिल्ली में केजरीवाल की गलती नहीं है।
लेकिन कांग्रेसियों को क्या हुआ? वो क्यों जाके पहले जिन्होंने खुद कंप्लेंट की, इनके अनिल चौधरी जो इनके अध्यक्ष थे, उन्होंने खुद ने पुलिस कंप्लेंट की, और अब जाके कह रहे हैं कि खुद डिमांड करते थे कि केजरीवाल को अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है बीजेपी। कई बार तो ये इंसिनुएट करते थे कि भाई बीजेपी केजरीवाल में कोई समझौता है, आम आदमी पार्टी जो है हर जगह कांग्रेस को डैमेज करने का काम करती है। और आज जो है उसी संदीप दीक्षित को और उन्हीं को सबको जो पानी पी पी कर गाली देते थे केजरीवाल को, उन्हीं को भेज रहे हैं उनके समर्थन में। इनके क्या बुद्धि मारी गई है? बिल्कुल ही
सर, ये मजबूरी की राजनीति, इसीलिए कांग्रेस खत्म हो गई ना सर, इनका कोई स्टैंड नहीं है। अब इनको ये खुद ही समझ में नहीं आ रहा क्या करें, राहुल गांधी क्या बोलेंगे, खड़गे साहब क्या बोलेंगे, मैडम सोनिया गांधी क्या बोलेंगी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष क्या बोलेंगे, जनता क्या बोलेगी, वोटर क्या बोलेगा, इनका अपना कैडर क्या बोलेगा, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको तो सिर्फ राहुल गांधी के ने कहा होगा कि जाओ तो पहुंच गए। प्रॉब्लम ये है कांग्रेस की, ना लीडरशिप है ना समझ है, सिर्फ दे आर सर्वाइविंग विद लीगेसी, कि वे एक पुरानी पार्टी है, कुछ लोग जानते हैं, अटैचमेंट है, और दूसरी बात ये बात भी सही है, डेमोक्रेसी में 100% लोग बीजेपी के तो हो नहीं सकते, तो जो बचे हुए हैं वो कहाँ जाएंगे, या तो कांग्रेस में जाएंगे, आम आदमी में जाएंगे। जब से लोगों को लगा है कि यार कांग्रेस किसी काम की नहीं रही, वो आम आदमी में चले गए। कोई इसमें आइडियोलॉजिकल इशू नहीं है, यहाँ कहीं पे भी कोई ऐसा अपने इनकी, आप बता दीजिए ना सर, आम आदमी पार्टी की क्या आइडियोलॉजी, हम कट्टर ईमानदार हैं, करते करते उन्होंने 350 करोड़ खा लिए, अपना घर बना लिया। सुकेश की चिट्ठियों पे तो भी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, 35 आरोप
है। स्टेटमेंट ईडी ने तो आज स्टेटमेंट 600 करोड़ का दिया है कोर्ट के अंदर।
सर मैं वही कह रहा हूँ, अभी तो निकलेंगे कई, मैं तो आपको बोल रहा हूँ ना सर, आप देखते रहिएगा, अल्टीमेटली ये पता लगेगा कि पार्टी में तो आए 200-300 करोड़ रुपए, बाकी कहां गए। और मैं आज आपके माध्यम से मैं ईडी को कह रहा हूं कि भैया गोल्ड अकाउंट भी देख लेना, प्रॉपर्टी अकाउंट भी देख लेना, और भारत के बाहर भी प्रॉपर्टीज एसेट्स देख लेना। ये एजुकेटेड लोग हैं, इनको पता है कि दुनिया में कहां कहां कैसे कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये आसान नहीं है, ये चीजें अनकवर करना बहुत टाइम लगेगा, और बहुत सारी चीजें तब समझ में आएंगी कि जब ये सी स्मेल छोड़ेंगे और फिर किस आलीशान से रहते हैं, तब आपको समझ में आएगा इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। और तब आज की घटनाक्रम और उस समय का जो कार्रवाई है, उन दोनों के तार जोड़ोगे, बहुत कुछ समझ में आएगा।
ये इन लोगों को कोई ये भी नहीं सोचता कि इतनी जल्दी ये अपने आप को मॉडल बनाना चाहते थे, और मॉडल बनाते बनाते दूसरा ही मॉडल बना गए। मैं तो आज ये देख रहा था कि जो इकोसिस्टम है इनका, वो बहुत बुरी तरह से त्रस्त है। आप अगर देख लीजिए अजीत अंजुम को देख लीजिए, या राजदीप सरदेसाई को देख लीजिए, या इनके इस्लामिस्ट फ्रेंड्स को देख लीजिए, तो पूरी तरह से जो है वो बिफरे पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि इनका जो बेनिफैक्टर था, इनकी इनका जो छाता अम्ब्रेला था, वो निकल गया, और अब जो है वो मोदी के तीसरा टर्म आने का थ्रेट और है। तो उनको लग रहा है कहीं ऐसा नहीं हो कि कहीं वो कलेक्टिव जो कल्ट होते थे ना, वो कल्ट बना के कोई कलेक्टिव सुसाइड व्यूसाइड करने के लिए चले जाए। दर्शकों से अनुरोध है कि वो अपने प्रश्न पूछ लें व्हाट्सएप पे और सुपर चैट पे। जी
देखिए सर, स्थिति इसलिए विचित्र है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ऑपोजिशन ने कभी भी अपने ही पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं किया। हर आदमी अपने आप को देखिए, सब बहुत सारे लोगों के लिए तो पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में ऐसे हॉबी रही कि गाड़ी के आगे झंडा लग जाए, घर के आगे बोर्ड लग जाए, मैं अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मोहल्ला अध्यक्ष, गली अध्यक्ष करके मेरे नंबर लग जाए बस। हर आदमी वो उनको एक VIP स्टिकर चाहिए था, एक फ्लैग चाहिए था, ताकि पुलिस वाला तंग ना करे और मोहल्ले में रौब हो जाए। इसके आगे राजनीति नहीं चाहिए। आप देख लीजिएगा जितने राज्यों के अंदर जो चुटबैये नेता हैं, वो दो ही चीजों पे विश्वास करते हैं, उनकी गाड़ी के आगे जरूर झंडा लगा होगा, उनकी गाड़ी के आगे जरूर पार्टी का नाम लिखा होगा, और अगर सत्तारूढ़ पार्टी से संबंधित हो गए तो वो मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर की जो गाड़ी होती है ना, उससे भी बड़ा बोर्ड लगा होगा, अध्यक्ष गली मोहल्ला कुछ भी करके, और पूरी नंबर प्लेट से डबल साइज की प्लेट। तो ऐसे लोग बहुत हैं जिनका डेस्परेशन है अपने आप को समाज में दिखाना कि वो कुछ हैं। वो लोग हैं सर, वो कहां जमीन पे उतर के काम करने वाले हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है सर, ये आज है आम आदमी पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म होगा, मान लीजिए कल को कांग्रेस सत्र भी कांग्रेस पे जुड़ जाएंगे, अगर बीजेपी का जोर आएगा ये बीजेपी में घुसने की कोशिश करेंगे। बंगाल में क्या हुआ, जो सारा गुंडा एलिमेंट लेफ्ट के साथ था, जैसे ही तख्ता पलट हुआ रातों रात वो सब टीएमसी में आ गए। वहां की लोकल इंडस्ट्री से पूछ, लोकल लोगों से पूछ, कोई फर्क नहीं पड़ा उनको, क्योंकि जो एंटी सोशल एलिमेंट है उसका एक ही उसूल है कि उनको सत्ता के करीब रहना है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है सत्ता में कौन है, ऑपोजिशन है, लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, मिडल है, उनको कोई लेना देना नहीं, हमें सत्ता के पास रहना ताकि हम अपनी दादागिरी कर सके बस। तो ऐसे एलिमेंट है तो पार्टियां कहां टिकती है सर, तो यही मजबूरी है, इसीलिए
एक चीज जो और देखने को आ रही है, अभी जो मैंने आपको पढ़ा था वही कि इनके कोई सपोर्ट ग्राउंड पे नहीं है। अब आप ये देखें कि ये वो व्यक्ति है जिसने असेंबली में कश्मीरी हिंदुओं का जम के उपहास किया था। अभी कुछ ही दिन पहले इसने पाकिस्तानी हिंदुओं को पाकिस्तानी कहकर अपमानित किया था और बार बार ट्वीट कर करके, यानी कि डेली 3 दिन तक उनको पाकिस्तानी पाकिस्तानी कहकर अपमानित करता रहा। ये देखिए, ये पाकिस्तानी जो है, इनकी हिम्मत देख लीजिए, ये पाकिस्तानी ऐसा कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी ऐसा कर रहे हैं। तो व्यक्ति को क्या, ये इतनी चतुराई से आया था, इसने लोगों को एक तरह से मेस्मराइज कर लिया, इसको बिल्कुल अनुमान नहीं है कि पब्लिक की जो सेंसिबिलिटीज हैं या पब्लिक की जो संवेदनाएं हैं वो कहाँ हैं।
सर पता नहीं लोग क्यों इसको नेता मानते हैं, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। मेरा असेसमेंट एज ए पर्सन, अगर मैं इस व्यक्ति को एनालाइज करूं, मेरा असेसमेंट डिफरेंट है। हाईली एम्बिशियस, हाईली इनसिक्योर, सेल्फ सेंटर्ड, इनकॉम्पिटेंट, ये असेसमेंट है मेरा इस व्यक्ति का। क्योंकि अगर आप इनकी जितनी हरकतें देखोगे वो इसी चीज को रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे अभी आपने उदाहरण दिया, आपको भारत सरकार ने एक निर्णय लिया सीएए का, जस्टिफिकेशन दिया कि हम क्यों ले रहे हैं। आपके लिए कोई लेना देना नहीं था, केंद्र सरकार और अंतरराष्ट्रीय मुद्दे में रोल केंद्र का होता, राज्य का नहीं था। पाकिस्तानी हिंदू अगर आए हैं, आपको एतराज क्यों है? अगर आपको एतराज है, आपको लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ रही है, आप एलजी से बात करिए, गृह मंत्री को चिट्ठी लिख दीजिए कि सर ये प्रॉब्लम है, इसके बारे में आप सोच लीजिए। आप यहां बैठ के गाजा की बात कर सकते हो, आप यहां बैठ के रोहिंग्याज की बात कर सकते हो, लेकिन आप पाकिस्तान में प्रताड़ित जो लोग वहां से जान और इज्जत बचा के हिंदुस्तान आए हैं, आपको उनसे नफरत क्यों है? आप खालिस्तानियों का साथ दे सकते हो, लेकिन हिंदुओं का साथ देने में आपको शर्म आ रही? तो इससे बात पता लगती है कि ये आदमी सिर्फ गैलरी में खेलता है, इसका अपना कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ना इसका थिंकिंग प्रोसेस है। और उसका कारण यह है कि इसके आसपास एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, एक भी, जो इसको सही राय दे सके। जितने लोग इसके आसपास हैं वो सब इसकी मेहरबानी और प्रेरणा है। आपको लगता है इसी की में इतनी हिम्मत है कि वो जाके केजरीवाल को बोल दे कि सर यू आर रॉन्ग ऑन दिस पॉइंट, या सौरभ में इतनी हिम्मत है जाके वो बोल दे कि यू आर रॉन्ग ऑन दिस पॉइंट, या भगवंत मान अब थोड़ा बहुत अपना स्टैंड लेने लगे हैं, लेकिन क्या ओवरऑल भगवंत मान या उनकी टीम में किसी में हिम्मत है जो केजरीवाल को बोल दे कि आई डोंट एग्री विद यू? इन्होंने तो पपर्टी इकट्ठे की है ना सर, और जिनके अंदर थोड़ी सी भी क्षमता थी इन्होंने उसको पार्टी से बाहर निकाला, क्योंकि इनको पता था कि मैं मूर्ख जैसे डिसीजन लूंगा, वो लोग ऑब्जेक्ट करेंगे, मेरी इज्जत उतर जाएगी, बेहतर इनको बाहर निकाल दे। तो ये तो मैंने कहा, इसीलिए ही इज अ हाईली इनसिक्योर, इनकॉम्पिटेंट, ओवर एम्बिशियस। इसीलिए जो आप कह रहे हो, इतनी हड़बड़ करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि उसको भारत में प्रधानमंत्री बनना था। आप उसकी मजबूरी समझिए, उसको ये लगता था कि मेरे अलावा हिंदुस्तान को कोई संभाल ही नहीं सकता। इसीलिए आप देखिए उनका एरोगेंट, दिल्ली के राजा हम हैं विधानसभा में खड़े होके बोले, पिछले कई चुनावों के अंदर रैली में इन्होंने क्या बोला, मैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हूं, देश की जनता को मुख्यमंत्री, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को बनाना चाहिए। तो ये हर जगह डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने आप को ही इम्पोज कर रहे थे, हम कट्टर ईमानदार हैं। भैया आपको बोलने की क्या जरूरत है, करके दिखा दो ईमानदारी, वो तो आप कर नहीं रहे। हम डरते नहीं है, 10 संबंध भाग रहे, आप जाने की हिम्मत नहीं हो रही आपकी, तो इनसिक्योर भी हैं आप, क्योंकि आपको पता है कि आपके आगे पीछे कोई नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो गई कि ये पूरी राजनीति चलाई गई, और जिसको कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग का छीका फूट गया, इनके साथ ये हो गया। उस समय इनको जो आज ताकत मिली है उसका एकमात्र कारण है फेल्ड लीडरशिप कांग्रेस, क्योंकि वो वैक्यूम क्रिएट हो गया था और जनता को एक स्पेस चाहिए था अपनी बात रखने के लिए। तो भागते भूत की लंगोट से ही कोई तो मिला यार, उम्मीद दिए थी कि आईआईटी का है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, ज्यादा उछल बोल रहा है कि मैं बहुत कट्टर ईमानदार हूं, तो लोगों ने कहा यार एक बार मौका इसको भी दे दो, वीपी सिंह को भी तो दिया ही था ना सर, राजीव गांधी को भी तो सिंपैथी वोट मिले थे, क्या हुआ? उनके टेन्योर खत्म होते होते क्या इज्जत रही उनकी समाज में? यही इसके साथ हो गया। तो ये तो पर्सनैलिटी प्रॉब्लम, इसमें और कोई कारण नहीं, इनकी अपनी पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है।